नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ट्विटर पर कर्मचारियों की छटनी शुरू होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 अक्टूबर को एक ईमेल भेजकर ट्विटर कंपनी अपने कर्मचारियों को बताएगी कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही एक मेल में ये भी बताया गया कि फिलहाल अस्थायी तौर पर कंपनी अपने ऑफिस को बंद कर रही है और स्टाफ को फिलहाल आने की जरूरत नहीं है। बता दें कि करीब एक हफ्ते पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट में से एक ट्विटर को अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने खरीदा है। इस बीच दुनिया भर के कई यूजर्स को ट्विटर चलाने में परेशानी हो रही है। कई ट्विटर यूजर्स माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मेल में कहा गया कि ट्विटर को सही रास्ते पर ले जाने के प्रयास में हम शुक्रवार को दुनिया भर के अपने वर्कफोर्स को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरेंगे। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने अपनी सामाजिक प्रभाव इकाई एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कंपनी ने एक बयान में ये जानकारी दी। बायजूस ने कहा कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कैप्टन मेसी ने शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए बायजूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बायजूस की सह संस्थापक दिव्या गोकलनाथ ने कहा, लियोनेल मेसी को हमारे वैश्विक एम्बेसडर के रूप में अपने साथ पाकर हम उत्साहित हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वह भी जमीनी स्तर से उठकर सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बने। बायजूस एजुकेशन फॉर ऑल करीब 55 लाख बच्चों को इसी तरह का अवसर देना चाहता है। मानवीय क्षमता की शक्ति को मेसी से ज्यादा बेहतर तरीके से कौन प्रदर्शित कर सकता है। बायजूस और मेसी के बीच समझौता होने से इस कंपनी की विदेशों तक पहचान बन जाएगी, क्योंकि फुटबॉल के दुनिया भर में 3.5 अरब प्रशंसक हैं। वहीं लियोनेल मेसी के सोशल मीडिया पर करीब 45 करोड़ फॉलोवर हैं। वित्त मंत्रालय ने चीन, थाईलैंड और वियतनाम से सौर सेलों की कथित डंपिंग के खिलाफ जारी जांच पूरी करने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय को 14 नवंबर तक का वक्त दिया। वाणिज्य मंत्रालय की इकाई DGTR ने ये जांच 15 मई 2021 को शुरू की थी। उसने जांच पूरी होने के लिए समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। DGTR को राजस्व विभाग की ओर से भेजे गए एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया, चीन, थाईलैंड और वियतनाम से सौर सेलों के आयात की चल रही जांच को पूरा करने के लिए और समय देने के अनुरोध को सक्षम प्राधिकार ने स्वीकार कर लिया है। जांच पूरी करने के लिए 14 नवंबर 2022 तक का वक्त दिया गया है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार पहले ही दो बार समय सीमा विस्तार दे चुकी है, इसलिए अब 14 नवंबर के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। भारतीय सौर विनिर्माता संघ ने कई कंपनियों की ओर से आवेदन देकर आयात को लेकर एंटी डंपिंग जाँच शुरू करने की मांग की थी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इस साल 7000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत निवेश की योजना बनाई है। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी अजय सेठ के अनुसार इसमें हरियाणा में नए संयंत्र का निर्माण कार्य और नए मॉडलों की पेशकश शामिल है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने सोनीपत जिले में नए संयंत्र पर काम शुरू कर दिया है। खरखोदा स्थित संयंत्र के 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसकी उत्पादन क्षमता पहले चरण में 2.5 लाख इकाई होगी। इस समय मारुति सुजुकी के हरियाणा में 2 विनिर्माण संयंत्र हैं। इसके अलावा गुजरात में सुजुकी मोटर के संयंत्र में भी कंपनी उत्पादन करती है। उसकी कुल उत्पादन क्षमता 22 लाख इकाई प्रतिवर्ष है। सेठ ने विश्लेषकों के साथ एक वार्ता में कहा, हम इस साल 7000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेंगे। निवेश योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित राशि में विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा, हमें विभिन्न विक्रेताओं को ठेके देने होंगे। ये पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा होगा। ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत अपने औषधि उत्पादों के लिए व्यापक बाजार पहुंच हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध FTA के एक अध्ययन के बारे में दी गई सूचना संपादित होने के साथ छेड़छाड़ से भरपूर है और असल में ये भारत ब्रिटेन FTA का एक तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ रूप है। अधिकारी ने कहा, प्रस्तावित समझौते की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही पक्षों ने अपनी संवेदनाओं एवं आपत्तिजनक बिंदुओं से अवगत करा दिया है। जीवन रक्षक दवाओं के दस्ते संस्करण का विनिर्माण ऐसा बिंदु है जिस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ लागू FTA में अपनी दवा कंपनियों के लिए सुगम बाजार पहुंच हासिल की है। इस समझौते के तहत भारतीय औषधि उत्पादों एवं चिकित्सकीय उत्पादों को 90 दिन के भीतर नियामकीय अनुमति मिलेगी। बिजली चलित वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अपनी स्थापित उत्पादन क्षमता का अगले 6 से 8 महीनों में पूरा इस्तेमाल करने के लक्ष्य से चूक जाएगी, बल्कि नवंबर 2023 तक वह केवल 50% क्षमता ही हासिल कर पाएगी। कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ भाविश अग्रवाल ने शुक्रवार को ये बात कही। पिछले महीने दीपावली से पहले नए S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करते हुए अग्रवाल ने कहा था कि अगले 6 से 8 महीनों में हम मौजूदा स्थापित क्षमता का पूरा दोहन कर सकते हैं, बल्कि भावी कारखानों में क्षमता और बढ़ा रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।